الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम मुकदमा मारिफुल कुरान पढ़ रहे हैं, जिन नंबर 1 से मारिफुल कुरान की। और पिछली क्लास में हमने जो कुरान मजीद की तिलावत में तस्हील के लिए उम्मत ने, यानी आसानी तिलावत में आसानी पैदा करने के लिए उम्मत ने जो जो इकदाम उठाए, तो वो टॉपिक पढ़ के हमने मुकम्मल कर लिया था। बल्कि उसके बाद कुरान करीम की तबाअत यानी कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, इसके ऊपर भी हमने पढ़ लिया था, जो दो पैराग्राफ्स मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दाम बरकातुहु हमने लिखे थे। और फिर उसके बाद आज पेज नंबर 49 के ऊपर इल्म तफसीर का मौजू शुरू करना है। इल्म तफसीर का मौजू जो है ये हमारे लिए इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है, ठीक है, यानी हमारे लिए, हमारे समझा रही है कि हम जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और जो हमारे ऑडियंस है, हमारे जो मुखातब लोग हैं, वो उमूमी तौर पर जिस पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए इल्म तफसीर का जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम टॉपिक है। दूसरे टॉपिक्स के मुकाबले में दूसरे टॉपिक्स भी अहम हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़ाहिर कुरान मजीद से मुताल्लिक़ हर बात जो है वो अहम है एक मुसलमान एक ईमान वाले के लिए। तो इल्म तफसीर सबसे ज़्यादा अहम क्यों है? क्योंकि, और वो भी हम जैसे लोगों के लिए, तो हम जैसे लोगों में सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि हम जैसे से आपकी मुराद क्या है, ठीक है। तो हम जैसे से इस फ़कीर की मुराद ये है कि जो कि पढ़े लिखे कहलाते हैं, ठीक है, एजुकेटेड लोग कहलाते हैं, चाहे वो ज़्यादातर ज़ाहिर सेकुलरली एजुकेटेड ही हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई मुश्किल ही से कोई मुफ्ती साहब या कोई आलम दीन साहब जो है वो क्लास में मौजूद होंगे, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इंजीनियर साहब तो डॉक्टर साहब तो लॉयर साहब तो लायर साहब तो हैं इस सारे किस्म के, कंप्यूटर साइंटिस्ट शायद सबसे ज़्यादा होंगे। तो इस किस्म के लोग हम हैं जो कि किताबें पढ़ना जानते हैं, बल्कि स्कूलों कॉलेजों के अंदर कई कई साल जो है वो इल्म हासिल कर चुके हैं। तो अब जब हम दुनियावी उलूम जो है वो बहुत ज़्यादा हासिल कर चुके होते हैं ना, और फिर जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि हम दीन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो शैतान है, शैतान जो हमारा दुश्मन है वो फिर क्या करता है, वो हार हार मान लेता है अपनी, है ना, वो कहता है ओहो मैं तो नाकाम हो गया, मैं तो इनको दुनियादार से दीनदार बनने में उनको नहीं रोक सका, तो अब जो है ना वो हार मान लेता है हमसे, और फिर जो है वो कहीं और जाकर के मसरूफ हो जाता है, है? दुनियादारों के ऊपर फिर मेहनत जारी रखता है और दीनदारों के ऊपर मेहनत ख़त्म कर देता है अपनी। नहीं, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो क्या करता है, वो वही करता है जो कि सारे शयातीन इंसर्जन वाले करते हैं, कि वो अपनी मेहनत की जो है ना वो सिर्फ तरतीब बदल लेते हैं, वो अपनी मेहनत की जो है ना वो स्ट्रेटजी बदल लेते हैं, ठीक है ना, वो तरकीब बदल लेते हैं, ठीक है ना, मेहनत छोड़ते नहीं हैं। हमारी तरह नहीं है ये जो शयातीन है ना, नहीं हमारी तरह नहीं है कि थक हार करके बैठ गए मायूस हो गए, ठीक है ना, ये मायूस नहीं होते, ये मायूस करते हैं, होते नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना ये अपनी मेहनत की तरतीब बदल देते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अब जो है वो दूसरी तरह की मेहनत शुरू कर देते हैं। पहली तरह की मेहनत जो करते थे ना जब हम दुनियादार थे, तो उस मेहनत को एक लफ्ज़ के अंदर उलमाए कराम ने सिमो दिया, एक ही लफ्ज़ के अंदर वो मेहनत क्या कहलाती है, दुनियादारों के ऊपर जो शैतान मेहनत करता है उस मेहनत को क्या कहते हैं, शहवाद की मेहनत। शहवात, ठीक है ना, यानी दुनिया की मोहब्बत, लालच, हिर्स, ठीक है ना, बस मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं ये मजे भी हासिल कर लूं, मैं खाने पीने के मजे हासिल कर लूं, मैं पीने पिलाने के मजे हासिल कर लूं, मैं मौसीकी के मजे हासिल कर लूं, मैं क्रिकेट के मजे हासिल कर लूं, मैं गिरगिट के मजे हासिल कर लूं, राइट। ये होती है शहवाद की मेहनत। और जब दीनदार बन जाते हैं तो फिर शहवाद की मेहनत जो है वो निस्बतन कम हो जाती है, खत्म तो वो फिर भी नहीं होती, कम हो जाती है। और वो फिर अब कौन सी शुरू करता है, वो शुबहात की मेहनत शुरू करता है। शुबहात का मतलब क्या होता है कि दीन के बारे में, अब जब आप दीनदार बन गए ना, तो अब दीन के बारे में वो डाउट्स पैदा करे, गलत फहमियां, ये सिर्फ डाउट्स का लफ्ज है ना, इससे भी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, शक कि भाई ये ऐसा है कि नहीं है, ये तो इसको हम डाउट समझते हैं ना, शक करना, नहीं, डाउट्स की मजीद इसकी तफसील ये होगी, शुबहात की मजीद तफसील ये होगी कि वो जो दीन की असलियात है ना, उनके बारे में गलत फहमी पैदा कर देता है, गलत फहमी यानी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, कि जो असल में उसका मतलब था उसके बजाय कुछ और मतलब समझना शुरू कर दे इंसान, ठीक है। तो ये भी डाउट्स की मेहनत ही है, ये भी शुबहात की ही मेहनत है, ठीक है, कि जो असल मानी था उसके बारे में आप शुभों में मुबतला हो गए, है ना, डाउटफुल हो गए, और आप किसी और मानी को जो कि गलत मानी था उसके बारे में डाउटफुल हो गए कि ये सही मानी है, उसके बारे में आप, यानी आपको लगने लगा कि वो गलत मानी जो था ना वो सही मानी है असल में, तो ये भी तो डाउट ही कहलाता है ना, इसी को भी तो शुभ ही कहेंगे ना, शुभहात ही कहेंगे ना इसको, ठीक है। तो वो शुभहात की मेहनत शुरू कर देता है। तो शुबहात की मेहनत के अंदर जो सबसे ज्यादा उसकी अहम, सबसे यानी नंबर वन मेहनत कौन सी होती है शुबहात में, उसकी नंबर वन तरीका क्या होता है, जो कि नंबर वन है, उसके बारे में शुबहात पैदा करता है ना, दीन के माखज, दीन के सोर्सेज में से जो नंबर वन सोर्स है वो क्या है, कुरान मजीद, ठीक है ना, वो कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद के बारे में वो शुबहात पैदा करता है, ठीक है ना, कि इस आयत का मतलब ये कोई थोड़ी है, ये इसका तो ये वो मतलब है, उस लफ्ज का मतलब ये कोई थोड़ी है, उस लफ्ज का तो वो मतलब है ना, तो ये कुरान मजीद के अंदर डाउट पैदा करता है। तो बेसिकली वो दीनदारों के जहनों के अंदर, खुसूसन जो पढ़े लिखे दीनदार होते हैं, वरना तो एक किसान भी दीनदार हो सकता है, राइट, एक आम सा मोची, एक आम सा जो है वो दुकानदार, राइट, एक जो है वो किरियाने का ठेला लगाने वाला है, फल का ठेला लगाने वाला, वो भी तो दीनदार हो सकता है ना, लेकिन उसका ताल्लुक किताबों से है ही नहीं, उसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है ही नहीं, वो सीधा साधा आदमी है, वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, और जो है वो जो फराइज उसके होते हैं चंद, वो बस वो पढ़ पढ़ा करके खत्म कर, उसके उसके दीन हो जाता है पूरा, राइट, एकेडेमिक बैकग्राउंड उसका होता ही नहीं है, हमारे जैसे लोगों का एकेडेमिक बैकग्राउंड होता है, राइट, किताबी किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि पढ़ लिख करके आखिर को इतने साल लगाए होते हैं ना किताबों के साथ, तो हमें फिर वो किताब के बारे में डाउट्स में मुब्तला करता है, ठीक है, और किताब के बारे में डाउट्स मतलब उसके मानी के बारे में डाउट्स, उसकी तफसीर के बारे में डाउट्स, ठीक है। हम समझते हैं कि हमने चूंकि मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी पढ़ ली है, या हमने कंप्यूटर साइंस बड़ी अच्छी पढ़ ली है, हमने जो है वो मेडिकल साइंस बड़ी अच्छी पढ़ ली है, हमने फलानी चीज अच्छी पढ़ ली है, जो कि हमने स्कूलों में कई साल और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ वो फिर कहीं जाकर के हमने वो उस वाले सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल किया होता है ना, लेकिन शैतान ये कहता है तुम चूंकि वो अच्छे से पढ़ चुके हो, अब तुम जो है ना वो चौक, अब चूंकि अब तुम दीन की तरफ आ गए हो, अब तुम ये भी जो है वो बड़े तुम्हारे समझ में जो आता है वो तो किसी और के समझ में आ ही नहीं सकता, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बने बनाए शेख भी होते हैं, राइट, क्योंकि वो जिस्मानी शेख होते हैं, जिस्मानी अमराज के मुआलिज होते हैं, तो उनको तो शेख का जो है वो मर्तबा भी मिला हुआ होता है, बल्कि आजकल जो है वो असल शेख तो वही होते हैं, डॉक्टर साहब ही होते हैं, आप देखें हैं, छोटे मोटे मशायख को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, लेकिन छोटे मोटे डॉक्टर जो कि अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ होगा, अभी उसका एमबीबीएस भी पूरा नहीं हुआ होगा, पहला साल ही उसका एमबीबीएस का चल रहा है, सब आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, दूसरा साल तीसरे साल में आकर के तो वो पूरा डॉक्टर बन जाता है, और सब उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, कोई छोटे मोटे शेख साहब जो है उनको तो कोई घास भी नहीं डालता, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे डॉक्टर साहब को सब बड़ी इज्जत देते हैं, ठीक है। तो वो तो पहले से जो है ना वो शेख बने हुए होते हैं, लोगों की इज्जतें उनको मिल रही होती हैं, तो उनका तो वैसे ही दिमाग जो है सबसे ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इस वजह से ना हमने अपने हजरत के यहाँ भी यही देखा कि जब कोई डॉक्टर आता है ना हजरत के पास, राइट, तो वो बड़ी बात समझी जाती, उसको बड़ी उसकी जो है ना वो, यानी लोगों को बताते हैं बाकायदा आपस में लोग ना कि भैया डॉक्टर साहब आकर के बैठ हुए। अब तो माशाल्लाह तांता बन गया है ना, अब तो माशाल्लाह हजारों नहीं लाखों लोग जो है वो आदत के साथ जुड़े हुए होते हैं ना। हम शुरू की बात कर रहे हैं, अब शुरू की तो खैर नहीं, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। शुरू का जमाना तो मैंने भी नहीं देखा था हजरत का, ठीक है, लेकिन दरमियान का जमाना तो कम अज़ कम अलहमदिल्ला साहब ने देखा है। तो उस जमाने में जब कोई डॉक्टर आकर के हजरत से बैत करता था ना, तो वो बड़ी बात समझी जाती थी। क्यों बड़ी बात समझी जाती थी? इसलिए कि डॉक्टर जो होता है ना, ये पहले से शेख होता है, ठीक है, ये बड़े लोगों का शेख होता है, बहुत सारे लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है ना। पीएचडी डॉक्टर को तो वैसे भी पाकिस्तान में कोई खास नहीं डालता, पहले तो कोई नहीं डालता था, अब डालते होंगे, लेकिन पहले तो कोई नहीं खास डालता था। इस वजह से पीएचडी डॉक्टर तो फिरा हुआ दिमाग, राइट, उसकी तो डेफिनेशन फिरा हुआ दिमाग ही होता है। मैं फिजिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये डॉक्टर साहब जब दीन की तरफ आते हैं, कहते हैं जी मैंने तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं पहले से, तो कुरान मजीद तो उतनी मोटी भी नहीं है किताब, राइट, वो इसकी तो तफसीर मुझसे ज्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से इल्म तफसीर जो है ना, इसको समझना, इसकी अहमियत को और इसके जो असल तरीका है इसको समझना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। इफ ही इज दीनदार सो वाई ही इज कन्फ्यूज, इफ ही इज दीनदार सो वाई इज ही कन्फ्यूज, इसका तो जवाब आप खुद ही दे रहे हैं ना, अभी इतनी देर से आप जो सुन रहे हैं, तो आपको क्या सही तो समझा रहे थे, वाई इज ही कन्फ्यूज, बताएं जल्दी से बताएं, वाई दीनदार है तो कंफ्यूज क्यों है, क्यों है भाई, कोई और जवाब दे दे। बड़ा अच्छा सवाल करते हैं ना बच्चे लोग जो है ना, ये कभी तो बेवकूफ़ी के सवाल करते हैं, लेकिन कभी बड़े अच्छे सवाल करते हैं जिसकी वजह से सबको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो जी क्या बताया, शैतान, राइट, क्योंकि दीनदार बनने के बाद शैतान जो है ही डज नॉट गिव अप ऑन यू, ही डज नॉट गिव अप ऑन यू, वो आपसे मायूस नहीं हो जाता कि आप तो ये दीनदार बन गया आप छोड़ो इसको, तो ही स्टिल वर्किंग ऑन यू, ही इज स्टिल वर्क, बल्कि एक अंदाज से देखा जाए तो उसकी मेहनत और बढ़ जाती है, क्योंकि नाउ यू आर बिगर चैलेंज, है ना, आप उसके लिए बड़ा चैलेंज बन गया, पहले तो छोटा सा चैलेंज थे उसके लिए, अब तो बड़ा चैलेंज, तो अब वो और मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से दीनदार भी बहुत कंफ्यूज होता है, एंड ही डजंट हैव अ शेख, तो शैतान इज द ओनली शेख दैट ही हैज, तो इस वजह से वो बहुत कंफ्यूज होता है। अच्छा, तो अब जो है ना इल्म तफसीर के बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू क्या लिखते हैं, माशाल्लाह आज तो उनका जो बयान सुना सुबह सुबह, तो आपने जो अक्सर कुछ ऐसा जिसने फॉरवर्ड भी किया अपने कॉमेंट्स के साथ, अल्लाह जदाय खैर अता फरमाए हमारी तरफ से उनको करोड़ों, कितना उन्होंने जो है ना वो, यानी एक तो स्टैंड लिया, और खाली स्टैंड लेना नहीं, स्टैंड तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, ये जो मदारिस का जो आजकल पाकिस्तान के अंदर तमाशा, नया तमाशा चल रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का, तो कितना यानी अच्छे अल्फाज में और खुले अल्फाज के अंदर, और बिल्कुल जो है ना वो बगैर किसी की परवाह किए हुए जबरदस्त तरीके से जो है वो मसले को समझाया है, कि उम्मीद करते हैं कि सबको बात समझ में आ गई होगी। तो उन्हीं के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम उनकी तहरीर भी पढ़ रहे हैं। तो फरमाते हैं कि अब कुछ जरूरी मालूमात इल्मे तफसीर के सिलसिले में पेश खिदमत हैं। अरबी जुबान में तफसीर के लफ्जी मानी है खोलना, और इस्लाह में, इस्तेलाह में, इस्तेलाह यानी जो अरबी की टर्मिनोलॉजी है या दीनी उलूम की टर्म्स होती हैं, तो उनकी टर्मिनोलॉजी में इल्म तफसीर उस इल्म को कहते हैं जिसमें कुरान करीम के मानी बयान किए जाएं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत भी सर्फ पढ़ चुके हैं और जो ज़्यादा पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है कि तफसीर का जो लफ्ज़ है ये यानी बाबे तफ़ील से निकलता है, फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन, फस्सरा, ठीक है, तो फस्सरा का मतलब उसने खोला, युफस्सिरु वो खोलता है, और तफसीर ये उसका मस्दर है यानी खोलना, ठीक है। तो खोलने से मुराद जो है वो सिर्फ ये नहीं कि किसी यानी किसी रस्सी की नॉट को खोल देना, बल्कि वो भी खोलने के माने में आएगा, लेकिन मानी और मफहूम को खोलना, और दीनी टर्मिनोलॉजी के अंदर खास कुरान मजीद के मानी और मफहूम को खोलना, इसके लिए लफ्ज तफसीर इस्तेमाल होता है। अच्छा, और जिसमें कुरान करीम के मानी बयान किए जाएं और उसके अहकाम और हिकमतों को खोल कर वाज़ह किया जाए। ठीक है, बयान का जो लफ्ज़ है ये फिर इस्तेमाल होता है कि यानी बिल्कुल वाज़ह तरीके से जो है वो किसी चीज़ को जो है ना वो बयान करना, खोल खोल करके बयान करना कि अगले बंदे को जिसको कि आप ये बयान कर रहे हैं उसको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये है इल्म तफसीर। कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए इरशाद है, वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि हमने कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा ताके ली कई के लिए है, यानी ताके ली तुबय्यना लिन्नासि, आप खोल खोल करके जो है ना वजाहत के साथ लोगों के सामने बयान करें, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ उतारी गई है। ठीक है, उनकी तरफ उतारी गई है क्या मतलब कि कुरान जो है वो लोगों के ऊपर नाजिल हुआ था? नहीं, कुरान मजीद तो नाजिल नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर ही हुआ था, जिसकी तफसील हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो किसके लिए नाजिल हुआ था? सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के लिए बवास्ते नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो कभी जो है ना वो वास्ते का जिक्र क्या कर दिया जाता है, कभी वास्ते को बीच में से यानी जिसका जिक्र वास्ते का जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन इतनी खुली हुई बात है कि जिक्र ना किए जाने के बावजूद पता है कि ये वास्ते के थ्रू ये काम हुआ है, वास्ते के बगैर ये काम हुआ ही नहीं, अगरचे के वास्ते का जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे जिक्र को जो है ना वो महजूफ कह देते हैं, कि इसको हजफ किया गया है लेकिन है यहाँ पे मौजूद, मानवीय एतबार से मौजूद है, लफ्जी एतबार से मौजूद नहीं है बस, लेकिन मानन तो मौजूद है। तो हमने कुरान आप पर उतारा ताकि आप लोगों के सामने वो बातें वजाहत से, अंजलना इलैका ज़िक्रा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी यहाँ तो लफ्जी तौर पर भी है कि भाई हमने आपके ऊपर नाजिल किया, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो कि उनकी तरफ उतारी गई है। ठीक है, तो दोनों ही अस्लूब यहाँ पे इस आयत के अंदर मौजूद हैं कि आपके ऊपर नाजिल किया गया और उनकी तरफ ना उतारी गई, उनकी तरफ ना नजूल की गई। अच्छा, नीज कुरान कुरान करीम का इरशाद है, लकद मन अल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया जबकि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत करे। ठीक है, तिलावत करे यानी जैसे उसने तिलावत सुनी पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनी या अल्लाह ताला से सुनी, तो उसको वैसे ही जो है ना वो आगे कॉपी कर दे, क्योंकि तला यतलू तिलावतन इसका मतलब होता है कि जो चीज़ पीछे से आपने जैसे सुनी है उसको वैसे ही आगे फॉरवर्ड कर देना, कॉपी कर देना। ठीक है, ताकि वो अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करें और वह युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक साफ करें, उनका तज़किया करें, वह युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उन्हें अल्लाह की किताब का इल्म पढ़ाएं सिखाएं, युअल्लिम अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, तालीम दें किसकी, अल किताब की, वल हिकमा और दानाई की बातों की तालीम दें, हिकमत की तालीम दें। हिकमत का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ठीक है, किसी चीज से सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है, सबसे ज्यादा फायदा, इसको हिकमत कहते हैं। कोई बात सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे की जा सकती है, इसको हिकमत कहते हैं। ठीक है, तो हिकमत का जो लफ्ज़ है ये इन सारी की सारी सिचुएशंस की सबसे बेहतरीन, ठीक है, इसको हिकमत कहते हैं। आम बिल्कुल सबसे सादा तरीन इसकी तशरीह क्या है, सुन्नत। सुन्नत जी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है ना यही हिकमत है। तो आप ने अपनी सुन्नत जो है वो उम्मत को सिखाई, यानी हिकमत सिखाई। ठीक है, अच्छा, चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिर्फ कुरान करीम के अल्फाज ही नहीं सिखाते थे बल्कि उसकी पूरी तफसीर बयान फरमाया करते थे, क्योंकि अगर बात सिर्फ यतलू अलैहिम आयात ही पे ख़त्म हो जाती है ना, कि ताकि वो तिलावत करके उनके ऊपर तिलावत करें अल्लाह ताला की आयात की। तो फिर तो भाई तिलावत से तो फिर सिर्फ अल्फाज ही पता चलते हैं, अब अल्फाज के मानी जो हैं वो खुद समझो, ठीक है ना, अल्फाज के मानी वो खुद समझें खुद उसको। तो यतलू अलैहिम आयाती ही पे बात ख़त्म हो जाती तो फिर तफसीर की नौबत नहीं आती, तफसीर बंदा हर बंदा खुद करे तफसीर उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने यतलू अलैहिम आयाती ही के ऊपर बात ख़त्म नहीं करी, बल्कि युअल्लिमुहुमुल किताब तक भी बात पहुँचाई, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम कुरान करीम के सिर्फ अल्फाज नहीं सिखाते थे बल्कि उसकी पूरी तफसीर बयान फरमाते थे। यही वजह है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक एक सूरत पढ़ने में बाज़ औक़ात कई कई साल लग जाते थे, जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह आगे आएगी, ठीक है। कुदरतन पिछले जुम्मे के बयान के अंदर भी ये मौजू आया था और उस वक्त तो मेरे जहन में ये वाले यानी था भी नहीं, वो सो तो कहीं और कभी पढ़ा था कि जैसे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा जो है वो 8 साल के अंदर पढ़ के ख़त्म करी, या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी कहीं पढ़ा कि उन्होंने 2 साल के अंदर सूरह बकरा पढ़ कर ख़त्म करी। तो 2 साल में क्यों, उनको कोई अरबी जुबान पढ़नी नहीं आती थी, उनको क्या हिज्जे करने होते थे, एक एक लफ्ज़ के ऊपर हिज्जे कर रहे थे, राइट? नहीं, वो समझ रहे थे उसके मानी और मारिफ के अंदर जो है ना, वो डेल्व डाउन कर रहे थे, डेल्व डीप, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो उनको, और वो उसमें क्या मानी समझ रहे थे कि वो भाई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला उसके जरिए से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपने आप को अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी सिफात के बारे में बता रहे हैं, अपने क्या है वो माशाल्लाह जो आप लोग कसस-उल अंबिया के अंदर पढ़ रहे हैं कुरान मजीद के, ठीक है। वो तो खैर कसस-उल नबीयीन के मकासिद चार जो पढ़े थे ना, अपने अय्याम के बारे में बता रहे हैं, अपने हाल अहवाल के बारे में, अपनी मखलूक के वो बता रहे हैं, माजी के बारे में बता रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब समझने में जो जितना ज़्यादा गौर करेगा उतना ज़्यादा जो है वो वक्त लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा। अच्छा, जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस मीन्स दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल इज़ नॉट जस्ट ऑफ ए मैसेंजर एज वी नॉर्मली से, जस्ट ऑफ ए मैसेंजर ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना, और यानी सिर्फ पैगाम पहुंचा देने वाला, जैसे कोई डाकिया होता है, पोस्टमैन जो पुराने जमाने में हुआ करता था हमारे बचपन में है पोस्टमैन, तो पोस्टमैन जो है ना वो सिर्फ खत ला करके डिलीवर कर देता था, कर देता था, खत को समझाता नहीं था पढ़ करके, खोल के पढ़ने वाला सिस्टम कहाँ होता था, जहाँ पे कोई बूढ़ी अम्मा रहती थी उनको पढ़ना नहीं आता था या उनकी आंखें खराब हो चुकी होती थी, तो डाकिया साहब जो है ना फिर उनकी इजाजत से खत को खोलते थे और फिर वो पढ़ करके भी सुना देते थे, लेकिन वो भी समझाते नहीं थे इसका क्या मतलब है। तो मैसेंजर इज नॉट जस्ट ए पोस्टमैन, इज नॉट जस्ट ए डिलीवरी मैन, ठीक है ना, एज ए कुरियर सर्विस वाले जो है वो डिलीवरी मैन नहीं, नबी अलैहिस्सलाम इज ए टीचर, ठीक है ना, टीचर, बोस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया, मुझे खाली डाकिया बना करके नहीं भेजा गया, ठीक है। तो जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे उस वक्त तक किसी आयत की तफसीर मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं था। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जहाँ कोई दुश्वारी पेश आती वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करते और उन्हें तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता था। रुजू करने का मतलब क्या कि दे वुड टर्न टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे वुड गो अप्रोच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको जो है वो तसल्ली बख्श, आप जो है वो उनको ऐसा जवाब देते थे कि जो कि उनको समझ में आ जाता था। तसल्ली कब होती है किसी सवाल करने वाले को, जब उसको जवाब समझ में आ जाए, है ना, समझ में नहीं आया कोई जवाब तो सवाल करने वाले को तसल्ली नहीं हो सकती है ना, मुतमईन तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो हम भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब किसी चीज़ का जवाब दें तो कोशिश करें अपनी तरफ से कि हम तसल्ली बख्श जवाब, ठीक है। अच्छा, कुछ तबीयतें जो हैं वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो कभी भी उनको इत्मीनान नहीं मिलता, वो अलग मसला है वो तो एक, ठीक है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें ना उसको तसल्ली करवाने की। बहरहाल, तो वो आपसे सम से रुजू करते और उन्हें तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता, ठीक है। तो सहाबे कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के ना, यानी रियल टाइम में, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है रियल टाइम, ठीक है, यानी बैच मोड में प्रोसेसिंग नहीं हो रही, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है। यानी आपने कोई चीज एंटर करी, फौरन उसका रिजल्ट आया, एंटर करी फौरन उसका रिजल्ट आ रहा है उसका, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिव तरीके से दीन सीखा जा रहा था। आज कुदरता ने शायद जिसने किसी को कुछ लिखा जो कि बल्कि मुकम्मल नहीं किया अभी तक, मौका ही उसके बाद पे खत्म हो गया, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जब वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये दिस वॉज द वे एंड दिस इज द सुन्नत वे, ठीक है। कि ये नहीं कि वही जो पिछले सैटरडे को भी बात हो रही थी जिन्होंने सुनी थी, उनको पता होगा कि जी एक जो है ना वो माशाल्लाह उस्ताद साहब हैं और जो है वो हजारों शागिर्द हैं, है ना। अब उस्ताद साहब जो है वो एक दफा उन्होंने बयान कर दिया या शेख साहब इन्होंने बयान कर दिया, अब हजारों लोगों ने उसको सुन लिया, ठीक है। जैसे आजकल जो है वो इंटरनेट के ऊपर बयान कर दिया जाता है और लाखों लोग उसको सुन लेते हैं, ठीक है ना। वेयर इज द इंटरेक्शन, राइट। अब इसके ऊपर किसको क्या समझ में आया, किसको पता किसको क्या समझ में आया, राइट। सब अपने अपने हिसाब से जो है वो समझ करके बैठे हुए हैं, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, पूछने पाछने का कोई सिस्टम ही कोई नहीं, क्योंकि एक उस्ताद है। अब एक उस्ताद जो है माशाल्लाह बरकत शरकत तो हम बहुत समझते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो बरकत होती है जी उनके टाइम में, बरकत होती है, बरकत होती है। अल्लाह के बंदे जितनी भी बरकत हो जाए वो हजार लोगों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनके सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते। इतनी बरकत तो यानी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं किया, तो आज का शेख साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है वो फिर क्या होता है, लोग जो है वो कुछ समझ में कोई नहीं आ रहा होता किसी को कुछ, या गलत समझ में आ रहा होता है। शेख साहब एक हैं, शैतान भी एक है, इबलीस तो वाकई एक है, लेकिन शैतान की जो जो टीम है वो तो एक नहीं है ना, लेकिन शेख साहब एक ही है। तो फिर हर बंदे के पास शेख साहब तो नहीं है, लेकिन हर बंदे के पास शैतान तो है ना, ठीक है। तो अब शैतान जो है वो वही कर रहे हैं, अपनी शुबहात डाल रहे हैं शेख साहब के मैसेज के बारे में भी। बहरहाल तो ये तरीका नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह के मजमे से कब खिताब किया, हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर, हज्जतुल विदा के मौके, जब इट वाज दी कल्मिनेशन ऑफ नबी अलैहिस्सलाम लाइफ, ठीक है ना। बाकी सारी जिंदगी जो है या तो इंडिविजुअल या जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स उनके साथ जो है वो खिताब हुआ, और वो भी बड़ा कोई बहुत तफसीली खिताब नहीं, छोटे छोटे से खिताब होते, ठीक है। तभी तो लोगों को बात समझ में आती थी, तभी तो लोग ना फिर उसके यानी उनकी इसलाह होती थी, उनकी जो है वो अकल में बात आ रही होती थी, वो बात कर रहे होते थे, है ना। अब तो क्यों लोगों को भी, अब ये शेख साहब का कसूर तो नहीं है ना कि कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला या कोई है ही नहीं समझने वाला। तो भाई आप समझें और आप फिर समझाने वाले बने। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास यही था ना, ये सहाबा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बात को सुनते थे, गौर से समझते थे, और इतना अच्छे तरीके से भी समझते थे कि फिर वो अगले बंदे को वो सहाबा समझा रहे होते थे। हर चीज़ जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली नहीं समझानी पड़ती थी, बल्कि सहाबा उसको समझ करके फिर आगे उसको समझा रहे होते थे। यानी वो खुद भी मुअल्लिम बन रहे होते थे अपने अपने स्फेयर के अंदर, अपने अपने जो है वो दायरे इख्तियार के अंदर वो खुद भी मुअल्लिम बन रहे होते थे ना, ठीक है। तो हम भी अगर ये काम करें तो फिर मसला हल हो जाए, ठीक है। लेकिन सारा का सारा जो है ना वो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक साहब के ऊपर डाली हुई होती है, अब वो तो नहीं कर सकते वाला काम, ठीक है। तो हमें ये बात जरा माजरत के साथ कुछ हजरात से, कि मैं पहले भी वैसे समझा चुका हूँ इसी क्लास के अंदर और फिर दोबारा, कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप सवाल ही ना करें, क्योंकि ये तो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा ना सवाल ना करना, ठीक है ना। सहाबा कराम सवाल करते तो हम आपको कैसे कह सकते हैं कि आप सवाल ना क्या करें पर्सनली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। लेकिन सवाल करने में और सर खाने में फर्क होता है, क्या फर्क होता है जरा आप लोग बता दें तो बहुत अच्छा हो जाए। सवाल करने में और सर खाने में क्या फर्क होता है बताएं जी, समझ में आना चाहिए इस वाले मसले को, बहुत ज्यादा बहुत सख्त जरूरत है इस बात की, क्या फर्क होता है इन दोनों चीजों के। जरूरत की इन्होंने लिखा है कि जरूरत की हद तक सवाल करना, अच्छा जरूरत से ज्यादा सवाल करना ये सर खाना बन जाएगा, नहीं सर खाना जो है ना ये एक अलग किस्म की कैफियत है, ठीक है ना। तो आपका जो जवाब है ये सफिशेंट जवाब नहीं है इसके लिए। इनका जवाब था कि जरूरत की हद तक सवाल करना सर खाना नहीं कहलाएगा। जरूरत का जो जो लफ्ज है ना, ये इतना तफसीर है जरूरत के लफ्ज के अंदर, कि अगर सुबह की क्लास आप में से कुछ लोगों ने सुनी, या खवातीन अगर आई हुई है उन्होंने अगर सुबह की क्लास सुनी होगी ना, इसके अंदर हमने शायद 10 मिनट शुरू के जो है ना वो सिर्फ लफ्ज जरूरत के ऊपर बात करी थी। इतनी तफसीर है इस लफ्ज जरूरत के अंदर। तो ये जरूरत इतना आसान जवाब नहीं है, ये कह देना। सर खाना मीन्स टू मैनी क्वेश्चन लाइक मे बी आई डू। हाँ सही, चले अच्छा हुआ आपने ग्रेबार में जा करके आपने देखा, अच्छी बात है। सर खाने का मतलब क्या होता है? द पॉइंट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बट द सेम क्वेश्चन इज स्टिल बीइंग आस्क्ड। माशाल्लाह, अल्लाह को जदाए खैर अता फरमाए, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन, व्हेन एन इंटेंशन अदर देन विद एन इंटेंशन अदर देन लर्निंग। नहीं, ऐसा नहीं है माशाल्लाह, हमें नियत पे कोई शुबा नहीं है। सर खाने वालों की नियत में हमें कोई शुबा नहीं है, ठीक है ना। उनकी नियत ये नहीं होती कि वो कुछ और इंटेंशन से जो है वो सवाल कर रहे हैं। माशाल्लाह नियत बड़ी खास होती है, खालिस होती है उनकी। लेकिन बात ये होती है कि आपको जो समझाएगा, चलो एक दफा नहीं समझ में आया, दूसरी दफा, दूसरी दफा नहीं समझ में आया, तीसरी दफा, लेकिन आप समझ के नहीं दे रहे एक बात को, और आप बार बार जो है वो एक ही सवाल किए चले जा रहे हैं। इसको जो है ना फिर इंसान कहता है, हमारी उर्दू जुबान के अंदर सुखाया जाता है, सर खाना। ठीक है, माशाल्लाह कुछ लोग तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम लिखवाने के काबिल हैं। एक ही बात को जो है ना वो इतनी दफा पूछ चुके हैं कि मैंने उनसे कहा आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपका ये आना चाहिए वाली चीज। ठीक है, तो इसको जो है ना, इसको सवाल करना नहीं कहते हैं। तो भाई सवाल करना इज एनकरेज्ड इन आवर दीन, ठीक है, लेकिन नॉट सर खाना। और साहब कराम अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सवाल ही क्या करते थे। ठीक है, नहीं इम्तिहान लेना मकसूद, तो फिर आप नियत पे शक करना शुरू हो गए ना। वो तो हम तो नियत पे नहीं बिल्कुल शक कर रहे हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब सवाल का जवाब मिलता है तो उस पर अमल करना, ये सवाल करना कहलाता है। और सर खाने का मतलब ये होता है कि जवाब पर अमल नहीं करना, बस सवाल पूछते रहना, और वही रिपीटेड 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 रिपीटेड, इसको फिर सर खाना कहना शुरू हो जाते हैं फिर उसके। ठीक है, इससे खाली टाइम ज़ाया होता है। आपका तो टाइम, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहे ज़ाया करें, लेकिन उस्ताद का तो टाइम ज़ाया ना करें ना यार। ठीक है, और भी लोग हैं, उन्होंने भी सवाल किए हुए हैं, उनको जवाब देने का मौका नहीं मिल रहा, और आप जो है वो पीछे लगे हुए हैं एक ही चीज़ के साथ। ठीक है, तो ये तो ज़्यादती है ना। तो उनको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस बात की ज़रूरत थी कि तफ़सीर क़ुरान को एक मुस्तक़िल इल्म की सूरत में महफूज किया जाता, ताकि उम्मत के लिए कुरान करीम के अल्फाज के साथ साथ उसके सही मानी भी महफूज हो जाए। ठीक है, सही मानी भी महफूज हो जाए, सिर्फ अल्फाज नहीं, और मुल्हिद व गुमराह लोगों के लिए उसकी मानवी तहरीफ की गुंजाइश बाकी ना रहे। ठीक है, मानवी तहरीफ मतलब कि उसके मानी में तहरीफ करना, तहरीफ मतलब उलट पुलट करना, गलत गलत मानी बयान कर लेना। ठीक है, तो गुंजाइश ना छोड़ी जाए इसके लिए। ठीक है, तो इस वजह से इनमें तफसीर जो है ना वो इंतहाई अहम था, क्योंकि ये जो एक तो कोशिश यही होती है कि भी अल्फाज में ही तहरीफ कर दी जाए, लेकिन आपने सुन लिया, पढ़ लिया पिछली जो हमारी इतनी सारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर के अल्फाज की हिफाजत कैसे करी उम्मत ने ना, राइट, कैसे कैसे याद किया, कैसे कैसे उन्होंने लिखा, फिर कैसे कैसे जो है वो यानी वेरिफिकेशंस करी उसकी, और फिर उसको जो है वो मसहफ के अंदर जो है वो कैसे प्रिजर्व किया गया, और फिर मसहफ की कॉपीज बनाई गई, और फिर उस्मान रज़ाने के ज़माने में दोबारा से यही बार सारा काम जो है दोबारा किया गया। तो वो सब क्या था, वो अल्फाज कुरान की हिफाजत हो रही थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अल्फाज कुरान का, जो कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रहता है उनको असाइन किया गया, और फिर उन्होंने कैसे ज़बरदस्त तरीके से उसको मैनेज किया है, वो अल्फाज कुरान की हिफाजत अब तक हमने पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मानी कुरान की हिफाजत पढ़ रहे हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट तफसीर इज। ठीक है, चुनाचे अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से इस उम्मत ने ये कारनामा इस हुस्नो खूबी से अंजाम दिया कि आज हम ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकते हैं, यानी तरदीद का कोई खौफ ही नहीं है हमें, कोई हमारी इस बात की तरदीद नहीं कर सकता कि अल्लाह की इस आखिरी किताब के सिर्फ अल्फाज ही महफूज नहीं है, बल्कि उसकी वो सही तफसीर व तशरीह भी मौजूद है, महफूज है, जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानेसार सहाबा के जरिए से हम तक पहुंची है। ठीक है, तो इसकी ये जो कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह है, यही दीन है, यही दीन है, यही शरीयत है। ठीक है, ये महफूज शक्ल में हम तक पहुंचा है। जिम्मा अल्लाह ताला ने उठाया, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, लेकिन अल्लाह ताला ने ये काम किसके जरिए से करवाया, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के जरिए से काम। ठीक है, मैं और आप हमारे जरिए से, या हमारे आबाओ अजदाद के जरिए से ये काम करवाया अल्लाह ताला ने। अच्छा, अब जो है वो 5 मिनट रह गए, तो तफसीर कुरान के माखज़, ठीक है, अखद करना कहते हैं किसी चीज़ को कहीं से निकालना, ड्राइव करना। ठीक है, जैसे कि आप ज़मीन खोद करके उसके अंदर से जो है वो पानी निकाल रहे हैं, या उसके अंदर से कोई न्यूट्रिएंट निकाल रहे हैं, कोई मेटल निकाल रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब जिस जगह से उस चीज़ को निकाला जाएगा ना, उसको माखज़ कहेंगे। ठीक है, माखज़, एक्सट्रैक्ट करना अंग्रेजी में। ठीक है, तो माखज़ लफ्ज़ यानी अखदा तो फेल है ना, तो माखज इसका इसम ज़र्फ़ है, यानी जहां पर ये फेल किया जाए, ये काम किया जाए, उसको माखज कहते हैं। तो तफसीर कुरान के यानी तफसीर कुरान कहाँ से निकाली जाती है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, इल्म तफसीर को इस उम्मत ने किस किस तरह महफूज किया, इस राह में उन्होंने कैसी कैसी मुशक्क़तें उठाई, और ये जद्दोजहद कितने मराहिल से गुजरी, उसकी एक तवील और दिलचस्प तारीख है जिसका यहाँ पर मौका नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकदमा लिखा जा रहा है, ये पूरे जो है ना वो उलूम मुरतब यहाँ नहीं किए जा रहे, तो इस वजह से हजरत ने यहाँ पर फुटनोट में भी लिखा है कि इसलिए उलूम कुरान पर अहकर की मुफस्सल किताब मुलाहिजा फरमाइए उसके लिए। ठीक है, तो वो उलूम कुरान जो किताब का नाम भी मुफ्ती तकरीस्मानी दारुल कातुम की, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील लिखी हुई है, यहाँ पर बड़ी एब्रिज वर्जन में फॉर्म में इन्होंने लिखा है। तो फरमाते हैं कि लेकिन यहाँ मुख्तसरन ये बताना है कि तफसीर कुरान के माखज़ क्या क्या हैं, और इल्म तफसीर पर जो बेशुमार किताबें हर जुबान में मिलती हैं, उन्होंने कुरान करीम की तशरीह में किन सरचश्मों से इस्तेफादा किया है। इल्म तफसीर की किताबें तो बहुत सारी हैं, जिनका कि आगे भी हजरत ने कुछ कुछ किताबों का जिक्र किया है, तो वो किताबें लोगों ने कैसे लिखी, कहाँ से वो इल्म एक्वायर किया, एक्सट्रैक्ट किया, अपनी अकल से, या जो है वो अपने ख्वाबों से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, या जो है वो आपस में लोगों ने डिस्कशंस करी, राइट, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस होती हैं, और उन डिस्कशन से जो है वो कोई लॉ बना देते हैं, राइट, कॉमन लॉ, ब्रिटिश कॉमन लॉ, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या पाकिस्तानी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स वगैरह, राइट, लोगों की डिस्कशंस, तो ये एक माखज हो गया ना, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का माखज क्या है जी, वो नेशनल असेंबली और सेनेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का माखज है। ठीक है, या किसी और लॉ का माखज क्या है, ठीक है, तो कुरान की तफसीर का माखज क्या है, ख्वाब, अपनी डिलिब्रेशन, या म्यूचुअल डिस्कशन, और व्हाट। ठीक है, तो फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि इसके जो सरचश्मे या माखज हैं वो कुल 6 हैं। नंबर 1 एंड नंबर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, कुरान करीम इटसेल्फ। ठीक है, खुद कुरान करीम। तो फरमाते हैं कि इल्म तफसीर का पहला माखज खुद कुरान करीम है, चुनाचे ऐसा बकसरत होता है कि किसी आयत में कोई बात मुजमल और तशरीह तलब होती है, तो खुद कुरान करीम ही की कोई दूसरी आयत उसके मफहूम को वाजह कर देती है। मसलन सूरह फातिहा की दुआ है, अब ये सबसे आसान मिसाल हजरत ने यहाँ पे लिख दी, वरना उलूम कुरान किताब के अंदर बहुत सारी दूसरी मिसालें भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम जैसों के लिए सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद होती है। तो उसमें है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी हमें उन लोगों के रास्ते की हिदायत कीजिए जिन पर आपका इनाम हुआ है। अब यहाँ ये बात वाजे नहीं है कि वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। ठीक है ना भाई, इनाम फरमाया, कोई कहे कि भाई जो बादशाह सलामत है ना, उनके पास इतनी जो है वो दौलत है, और इतना बड़ा महल है, और इतनी जबरदस्त गाड़ी है, और ये अल्लाह ताला ने उन पर इनाम फरमाया होगा, बादशाह सलामत यहाँ पे मुराद होंगे। कोई कहेगा नहीं, बादशाह सलामत मुराद नहीं है खाली, बल्कि जो बिलियनियर्स है ना इस वक्त दुनिया के अंदर, वो बादशाह तो नहीं है लेकिन बिलियनियर्स हैं, है ना, दे ओन आइलैंड, दे ओन देयर पर्सनल एयरक्राफ्ट, और उनके पास जो है वो ये भी है और ऐसा भी है वैसा भी है। तो अनअमता अलैहिम से मुराद जो है ना वो बिलियनियर्स होंगे, राइट? या अनअमता अलैहिम जो है ना वो होंगे जो, यानी और बहुत कहीं और क्या क्या इसकी तफसीरें कोई इंसान अपने जहन से बना सकता है, ठीक है? तो क्या हम अपने अकल से सोचेंगे कि अनअमता अलैहिम की क्या तफसीर है? बल्कि नहीं, कुरान मजीद में जब खुद इसको एक्सप्लिसिटली बयान फरमा दिया गया है, तो हम कुरान मजीद से इसको देखेंगे ना, तो कुरान मजीद ने फरमाया फाउलाइका मअल्लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ठीक है? वो कौन है? वो हैं जो के मा अल्लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो के उन लोगों के हमराह होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया, ठीक है ना? तो असल में बात तो कुछ और लोगों की हो रही है जो के उन लोगों के साथ होते हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। अब अल्लाह ने इनाम किन लोगों पे किया वो कुरान मजीद बता रहा है। वो कौन है? मिन मिन यहाँ पर बागिया नहीं है बल्कि बयानिया है, यानी ये बयान कर रहा है कि वो कौन होते हैं। वो होते हैं अन्नबीयीन, प्रॉफिट्स, और सिद्दीकीन, और शुहदा और सालिहीन। यही लफ्ज है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी तफसीर तो उनकी बहुत सारी है। तो चुनाचे मुफस्सिरीन कराम जब किसी आयत की तफसीर करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस आयत की तफसीर खुद कुरान करीम ही में किसी और जगह मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होती है तो सबसे पहले इसी को इख्तियार फरमाते हैं, ठीक है? तो कुरान मजीद अपने आयत की खुद जो है वो बहुत सारी जगहों पर तफसीर कर देता है और बहुत सी जगहों पर नहीं भी करता। तो अब जहां पर नहीं करता फिर वहां पर दूसरा माखज, दूसरा सर चश्मा रिफर किया जाता है जो कि हदीस मुबारक है, ठीक है? अब हदीस मुबारक जो है वो उसके बारे में तफसील इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर ही पढ़ते हैं। अच्छा हुआ टाइम खत्म हो गया, क्योंकि इरादा ये था कि दो चार और भी आयात आपके सामने हम रख लें मिसाल के तौर पर, तो वो फिर उसमें टाइम भी और लगेगा, मतलब चलिए थोड़ा मुताले तो अलहमदुल्ला कर लिया था, लेकिन और टाइम चाहिए उसके लिए। तो अगली क्लास के अंदर करके फिर उसके बाद हम हदीस के ऊपर आएंगे, ठीक है? अहम तरीन ज़रूरत वाली चीज़ है हमारे लिए, उसकी वजह हमने बयान भी कर दी, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो शैतान के इस वार का शिकार आसानी के साथ हो जाते हैं कि भाई तुमने जहाँ दूसरे उलूम पढ़ लिए हैं इतने सारे, तो अब तुम कुरान मजीद भी जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ दो और उसके बाद उसकी तफसीर अपनी मर्जी से कर लो, ठीक है ना? और दूसरी वजह जो कि एक्चुअली शुरू में बयान नहीं हुई वो ये है कि एक तो ये शैतान जो है वो पर्सनली हर किताब पढ़ने वाले के दिल में बात डालता है, और दूसरी वजह ये भी है कि बहुत सारे ऐसे शयातीन भी मौजूद हैं, इंसानी शक्ल में भी मौजूद हैं, इंसानी शक्ल में भी बहुत सारे जो है वो शयातीन जो है ना वो दुनिया के अंदर एक्टिव होते हैं, कि जो कि कुरान मजीद की गलत तफासीर बयान कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो उनकी तरफ जो है ना वो फिर हमारी तबीयतें जो है वो माइल बड़ी आसानी से हो जाती हैं उन लोगों की तरफ। क्यों? इसलिए कि वो खाली तफसीर बयान नहीं कर रहे होते बल्कि वो दीन के जो अहकाम होते हैं ना उन अहकाम को भी मस कर रहे होते हैं, उनको रिलैक्स कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर गांधी साहब जो है, ठीक है ना, तो अब उनके जो है ना वो माशाल्लाह, अल्लाह रहम करे, बल्कि माशाल्लाह गलत इस्तेमाल कर लेता हूँ आदतन, तो तफसीर की क्लास हो रही है, अंकल आंटी लड़का लड़की है ना मर्द आराम से बैठे हुए हैं सारे के सारे, है ना? ना कोई पर्दे की तकलीफ है ना, पर्दा तो एक तकलीफ है ना औरत के लिए, मर्द की के लिए तकलीफ है कि भी औरत की तरफ निगाह ना करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, कोई मसला नहीं है, जैसे चाहें आप आकर के बैठें लेटें गले मिलें कुछ भी करें, है ना? भाई कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं हम तो, ठीक है? तो अब जो है ना वो कितना आसान है नफ्स के ऊपर ये वाली चीज़, राइट? कितना, कोई पाबंदी कोई नहीं, शरीयत की कोई पाबंदी कोई नहीं, ठीक है? तो ऐसे जो लोग हैं फिर वो खूब जो है ना वो अपने उल्टी सीधी लॉजिक्स पेश करके तफसीर कर रहे होते हैं, और चूंकि हमारा नफ्स जो होता है वो आसानी चाहता है, बगैर पाबंदी पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, तो उसकी तरफ उनकी तरफ फिर वो माइंड भी बड़ी आसानी के साथ हो जाता, ठीक है? तो इस वजह से हमारे लिए जो है ना ये इल्म तफसीर वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बल्कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे ईमान का दारो मदार है। अल्लाह ताला हमें बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।